सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं सिद्धादद्धट्टमला विशुद्धबुद्धियेलद्धसौवत्था तिह्वणशिरसे हरया पश्यन्तु भणारया सौवे तिह्वणभवनपसर्य पच्छक्खवबोहकिरणपरिवेढो उह्यो वियणत्तवणो अरहन्तदिवायरो जयौ तिरयणखगणिहाये णोत्तारिय मोहसेन शिरणिवहो आयिरिय राउपशिवौ परिवालिय भविय जियलो अण्णाणन्दयारे अणोरपारे भमन्त भवियाणम् उज्जो जेहि कौ पश्यन्तु सया उवच्छाया दुहतिवति सा विनडिय तिहुवण भवियाण सुठुरायेण परिठवियाधम्मपवा सुअजलवाणपयाणेन सन्धार्य शीलहरा उत्तार्य चिरपमाद दुःशीलभरा साहू जयन्तु सौवे शिवसुहपः सण्ठियाहु निगलिय भया। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडाग्रम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। नौवीं पुस्तक जो चतुर्थ खंड, उसमें कृति अनुयोग द्वार की चर्चा चल रही है। अभी हम पृष्ठ संख्या 68 पर आ गए हैं। 67 में थोड़ा देख लेते हैं, ये विषय कौन सा अपना चल रहा है, याद है ना? मन परे ज्ञानियों की बात चल रही है, उसमें रुजुमति और विपुलमति की चर्चा चल रही है। तो उसमें उनका जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या है, उसकी बात चल रही थी। तो उसमें 67 पृष्ठ पर अंतिम लाइन कि आकाश की एक श्रेणी ही जानता है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते। अवधि ज्ञान में भी ऐसा आया था, एक श्रेणी में ही जानेगा। तो उसका फिर उन्होंने वो कैसा नहीं घटित होता वो भी बताया था। वैसे यहाँ कहते हैं किंतु वह घटित नहीं होता। अब हम 68 पेज पर आए, यहाँ तक तो हमने कल पढ़ा था। क्यों नहीं घटित होता? क्योंकि ऐसा मानने पर मनुष्य एवं विद्याधरादिकों में विपुलमति मनपरे ज्ञान की प्रवृत्ति न हो सकने का प्रसंग आता है। यानी उनको मनपरे ज्ञानी उनके मन की बात नहीं जानेंगे, ऐसा प्रसंग होगा। मानुषोत्तर शैल के भीतर ही स्थित पदार्थ को जानता है, उसके बाहर नहीं, ऐसा वर्गणा सूत्र द्वारा निर्दिष्ट होने से यानी कथित होने से। वर्गणा सूत्र ऐसा बताता है कि मानुषोत्तर शैल के भीतर ही जानते, बाहर नहीं। ऐसा होने से मानुष्य क्षेत्र के भीतर स्थित सब मूर्त द्रव्यों को जानता है, उससे बाह्य क्षेत्र में नहीं, ऐसा कोई आचार्य कहते हैं। किंतु वह घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा स्वीकार करने पर मानुषोत्तर पर्वत के समीप में स्थित होकर बाह्य दिशा में उपयोग करने वाले के ज्ञान की उत्पत्ति न हो सकने का प्रसंग प्राप्त होता है। ये 45 लाख योजन प्रमाण उसका घन क्षेत्रफल है, घन प्रतर भी है और फिर उसकी कुछ हाइट भी है ना, उसको इसलिए घन प्रतर आकार कहा था। यदि कहा जाए कि उक्त प्रसंग आता है तो आने दीजिए, सो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके उत्पन्न न हो सकने का कोई कारण नहीं है। क्षोभशम का अभाव उसकी उत्पत्ति का कारण नहीं है, क्योंकि उसके बिना मानुषोत्तर पर्वत के अभ्यंतर दिशा विषय ज्ञान की उत्पत्ति भी घटित नहीं होती। कोई ऐसा कहते हैं कि उनको ऐसा क्षोभशम नहीं है बाहर का जानने का, तो क्षोभशम से तो विशिष्ट क्षेत्र तक जानने का क्षोभशम है। तो यदि क्षोभशम नहीं होता तो मानुषोत्तर पर्वत के भीतर वाले जो 45 लाख योजन है उसमें भी नहीं जान सकते थे। क्षोभशम तो है उनके, अतः क्षोभशम का अस्तित्व सिद्ध होता है। मानुषोत्तर पर्वत से व्यवहित होने के कारण, व्यवहित यानी उसमें बाधा आई ना, अंतर पड़ा, बीच में पर्वत आया, इसलिए उसके बाहर को का नहीं जानते, ऐसा अगर कोई मानेंगे तो मानुषोत्तर पर्वत से व्यवहित होने के कारण परभाग में स्थित पदार्थों में ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, यह भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि असंख्यात अतीत व अनागत पर्यायों में व्यापार करने वाले, ये इन्हें कोई पूर्व काल की बात है इसलिए जानने में कोई बाधा नहीं है। तो ये कोई पर्वत बीच में आड़ा है, ये बात कैसे हो सकती है? और दूसरी बात, तथा अभ्यंतर दिशा में पर्वतादिकों से व्यवहित पदार्थों को भी जानने वाले। अभी यहाँ कोई मुनिराज बैठे हैं भरत क्षेत्र में, और वो मानुषोत्तर क्षेत्र के भीतर ऐरावत क्षेत्र की बात जानेंगे कि नहीं जानेंगे, विधेय क्षेत्र की बात जानेंगे कि नहीं, अन्य पुष्करार्ध की बात यानी अंदर वाला जो अन्य द्वीप है उसको भी जानेंगे कि नहीं जानेंगे, जैसे धातकी खंड को जानेंगे। अब यहाँ बैठे बैठे बीच में कुलाचल पर्वत है, अभी हम कुलाचल को छोड़ दो, हिमालय पर्वत है बीच में, तो क्या वो पर्वत उनको जानने में कोई बाधा तो नहीं डाल सकता? उसके कारण तो ये मानुषोत्तर पर्वत आड़ा आ जाए, ये बात कैसे हो सकती है, ये कहना चाहते हैं। तो अभ्यंतर दिशा में यानी मानुषोत्तर क्षेत्र में, मानुषोत्तर पर्वत के अंदर वाले क्षेत्र में पर्वतादिकों से व्यवहित पदार्थों को भी जानने वाले मनपर्य ज्ञानी के अनिंद्रिय प्रत्यक्ष का, ये उनका ज्ञान कैसा है? अनिंद्रिय प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ज्ञान है, वहाँ कोई इंद्रिया या मन के द्वारा वो जानना होता है ये बात नहीं है। तो ऐसे अनिंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान को मानुषोत्तर पर्वत से प्रतिघात नहीं हो सकता, उससे ऑब्स्टेकल विघ्न नहीं हो सकता, बीच में पर्वत है इसलिए नहीं जानते ये बात उनके लिए नहीं हो सकते। अतएव मानुषोत्तर पर्वत के भीतर यह वचन क्षेत्र का नियामक नहीं है, किंतु ये क्षेत्र नहीं बताता परंतु एरिया बताता है, यानी क्या 45 लाख योजन इतना ही बताता है, किंतु मानुषोत्तर पर्वत के भीतर 45 लाख योजनों का नियामक है, क्योंकि विपुलमति मनपरे ज्ञान के उद्योत सहित क्षेत्र को, उद्योत सहित यानी उद्योत सहित यानी उसके द्वारा प्रकाशित, प्रकाशित यानी वे जानते हैं, ज्ञान के उद्योत सहित क्षेत्र को, उद्योत यानी जहां तक के क्षेत्र को जानते हैं उसको उद्योत से, जैसे प्रकाशित मनपरे ज्ञान के द्वारा प्रकाशित यानी क्या, मनपरे ज्ञान के द्वारा जितने क्षेत्र की बात जानी जाती है उसको उघाड़ नहीं कह सकते उसको हम, जितने क्षेत्र तक मनपरे ज्ञानी का ज्ञान जानता है, जैसे केवल ज्ञान का उद्योत कहाँ तक है, पूरे लोकालोक में है, ये उद्योत कहना चाहते हैं। इस क्षेत्र को घनाकार के घनाकार से स्थापित करने पर 45 लाख योजन मात्र ही होता है, अथवा उपदेश प्राप्त कर इस विषय का व्याख्यान करना चाहिए, अथवा कहकर अन्य भी कुछ का व्याख्यान होता है उसका भी यहाँ स्वीकार किया गया है। इसमें अच्छी तरह से बताएं उसको कि 45 लाख योजन का स्क्वायर समझना, मानुषोत्तर पर्वत जैसा गोल नहीं समझना, मानुषोत्तर पर्वत तो गोलाकार है, अभी हमने सीखा था ना, पुष्करार्ध द्वीप के बीचों बीच गोलाकार ऐसा जैसा कंकनाकृति ऐसा मानुषोत्तर पर्वत है, उसका व्यास यानी डायमीटर 45 लाख योजन है। अभी 45 लाख योजन का हम अगर चौकोन निकालेंगे तो चौकोन के अंदर वो गोल आ गया, परंतु वो गोल के चारों ही कोनों में कुछ प्रदेश कुछ भूमि रह जाती है ना, तो वहां तक जाने का ऐसा यहाँ उपदेश है इसमें। अभी हम पढ़ेंगे इसको, पृष्ठ संख्या निकालते हैं, ये इसमें सम्यक ज्ञान चंद्रिका में है 567 होना चाहिए। एक मिनट, नहीं, वहाँ मुझे मिल गया मन परे ज्ञान, उसका क्षेत्र संबंधी कहाँ है वो मैं देख रही हूँ। किसमें 67 हाँ कल ही पढ़ा था मैंने इसको। हाँ उत्कृष्ट क्षेत्र मनुष्य लोक प्रमाण है, अभी आ गया। ये 568 लेना, पहले तो बताया ना उत्कृष्ट क्षेत्र उसका मनुष्य लोक है, उसके आगे उसकी टीका में समझाते हैं, जो अभी हमने देखा था वैसा ही वहां समझाएंगे। नरलोक यानी मनुष्य लोक, नरलोक यहाँ ऐसा वचन कहा है, सो यहाँ मनुष्य लोक का विष्कम्भ का जेता परिमाण है सो लेना। विष्कम्भ है वो अभी यहाँ उसके डायमीटर व्यास 45 लाख योजन जो है उसका विष्कम्भ लेना। और मनुष्य लोक तो गोल है क्योंकि 2.5 द्वीप है ना, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, तो ये तो गोलाकार है। और यह विपलमति का विषयभूत क्षेत्र समचतुरस्र घन प्रतर कहिए, घन प्रतर है ना, समचतुरस्र यानी दोनों ही भुजाएं समान है, तो 45 लाख योजन एक भुजा और दूसरी भुजा 45 लाख योजन, तो उसका चौकोण हो जाएगा, चौकोर हो जाएगा समचतुरस्र यानी जिसकी दोनों भुजाएं समान है उसको समचतुरस्र कहते हैं। घन प्रतर कहा, अकेले प्रतर नहीं कहा, प्रतर कहते तो आकाश की एक सिंगल लाइन हो जाएगी, जैसे हम पेपर अगर लेते हैं तो ये प्रतर हुआ, और बुक उसके कुछ थिकनेस है तो उसको घन प्रतर कहते हैं। 45 लाख योजन ऊंचाई में नहीं लेना उसको, नहीं तो पूरा ही घन हो जाएगा 45 लाख, हाँ वैसा नहीं है, इसलिए घन प्रतर कहा। कुछ हाइट तक जानते हैं इसलिए घन प्रतर कहा। घन प्रतर उसका अर्थ क्या कहते हैं, समान चौकोर घनरूप प्रतर क्षेत्र, घनरूप प्रतर क्षेत्र, क्यों प्रतर तो है, प्रतर में एक बाजू है 45 लाख और दूसरी 45 लाख, और उसका स्क्वायर करेंगे और उसको हाइट भी कितने ही तक तो जानते हैं हाइट तक, तो उसको भी लेना पड़ेगा उसमें। तो घनरूप प्रतर क्षेत्र कहा है, सो 45 लाख योजन लंबा तितना ही चौड़ा ऐसा परिमाण जानना। यहाँ ऊंचाई थोड़ी है, ऐसे उसकी लंबाई जो है चौड़ाई है उससे ऊंचाई कम है, ताते घन प्रतर कहा है। जाते ही, जाते का अर्थ होता है क्योंकि, मानुषोत्तर पर्वत के बाह्य चारों कोणानी विषय तिष्ठते, बात है ना, वो तो गोलाकार है और हमने 45 लाख योजन ऐसा चौकोर लिया है, तो ये गोल के बाहर जो चार कोनों में जो वहां रहने वाले कौन कौन है, कल बात आई थी ना तिर्यंचों को जानेंगे कि नहीं जानेंगे, वहां तिष्ठते देव तिर्यंच, संगी पंचेंद्रिय है वो भी चिंतन, तो चिंतन चलेगा उनका मन के द्वारा, कुछ चिंतये हुए तिनी को भी उत्कृष्ट विपुलमति मन परे ज्ञान जाने हैं, ऐसे क्षेत्रपति जघन्य उत्कृष्ट भेद कहे। अभी हमने जो धवला में पढ़ा था तो वहां तो ऐसा कहा था कि कोई मानुषोत्तर पर्वत के अंदर वाले भाग में वहां कोई मुनिराज है यानी पुष्करार्थ द्वीप के, तो वो अपने जहां तिष्ठते वहां से 45 लाख योजन प्रमाण जानेंगे, ऐसा वहां कहना था। बाहर भी हाँ वहां वहां तक ऐसे वहां कहना था, अभी यहाँ कहा था मानुषोत्तर पर्वत के बाहर खाली चौकोर भूमि तक भी जानेंगे, यानी 45 लाख योजन का लंबा और चौड़ा ऐसे चौकोन तक जानेंगे, ऐसे यहाँ अभी हमने जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका पढ़ी ना 568 पृष्ठ पर, वहां ऐसा कथन आता है। अभी हमें तो जो जहां कथन आता है उसको जानना है, ये सही है कि ये गलत है, ये निर्णय करने वाले हमारी बुद्धि नहीं है, ये 568 पर हमने पढ़ा भी, अब आगे पढ़ेंगे। अब काल की अपेक्षा बताते हैं। काल अपेक्षा वह यानी यहाँ विपुलमति की बात चल रही है, जघन्य की हमने, रुजुमति की जघन्य उत्कृष्ट की बात देखी थी, वहाँ 2-3 भव कहे थे जघन्य और उत्कृष्ट में 7-8 कहे थे। अब यहाँ जघन्य से 7-8 भव ग्रहणों को और उत्कर्ष से असंख्यात भव ग्रहणों को जानता है, भाव की अपेक्षा जो जो द्रव्य ज्ञात है उस के असंख्यात पर्यायों को जानता है। जितने द्रव्यों को जाने, हमने देखा ना इतने परमाणुओं को, उनके समूह को, उतने स्कंद तक को जानते हैं, तो उनकी पर्यायों को भी जानेंगे, और जितने भेद है वहाँ वो असंख्यात असंख्यात गुना, तो जो उत्कृष्ट है तो यथा योग्य उसके जो कोई पर्याय है उसको जानेंगे। इस प्रकार के विपुलमति मनपर्य ज्ञानी जिनों को नमस्कार हो, यह सूत्र का अभिप्राय है। हाँ देखो, सम्यक ज्ञान चंद्रिका में उसके विशिष्ट उसमें बताया। देखो देखो, आपका ऐसा कहना है ये भव में कैसा घटित करना, दूसरे के मन की बात जानता है तो दूसरे के मन की बात में देखो वो भव में कैसे उसको घटित करना है। तो वो जीव जो पूर्व भव में सोचा था उसने, वो स्वयं तो भूल, या 10 साल पहले कुछ सोचा था, 10 साल पहले कुछ बोला भी था, फिर भी अभी वो भूल गया है और मुनि के सामने जाकर वो यहाँ ये ऐसे लिखा, देखो मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। यहाँ पहले से ही हम देखते हैं रुजुमती से, देखो देखो अभी अभी पहले से हम ये सब पढ़ेंगे। 564 पृष्ठ से यहाँ शुरू हो जाता है। ये 446 की टीका अभी हम देखते हैं, उसके पहले भी वो किसको उपजता है, वो पहले उसके पहले के पृष्ठ निकालना, क्योंकि मनपरे ज्ञानी की बात संबंध में बहुत सारी बातें हैं, हमने पढ़ भी ली है, फिर भी दोबारा पढ़ते तो ये ख्याल में आ जाएगा। कल बात ये मन की, वचन की और काय की भी निकली थी उसमें, मन के द्वारा चिंतवा हुआ, वचन के द्वारा बोलना हुआ, और काय के द्वारा अभिनीत यानी अभिनय, यानी उसकी कोई जो हालचाल चेष्टा है उसके द्वारा जो उसकी बात है। देखो यह टीका के ये इसमें लिखा है 560 पृष्ठ पर, वाली टीका, वहां से हम पढ़ते हैं। देखो, चिंतितम कही अतीत काल में जिसका चिंतवन किया, अचिंतितम कहिए अनागत काल विषय चिंतवेगा, ये भव ग्रहण की बात भी इससे सिद्ध होती है। आगामी भव में जो कुछ सोचने वाला है, और अर्धचिंतितम कहिए संपूर्ण चिंतया नाही, अभी उसका उसके बारे में विचार चल रहा है, उसको भी पता नहीं अभी उसमें क्या विचार चलेंगे, आधा चिंता हुआ चिंतिया हुआ, ऐसे जो अनेक भेद लिए, अन्य जीव का मन विषय प्राप्त हुआ अर्थ, अर्थ यानी पदार्थ, पदार्थ यानी पुद्गल ही लेना है, पुद्गल संबंधी, या संसारी जीव और पुद्गल ऐसा भी कितने जगह का है, ऐसे जो पदार्थ ताको जो जाने सो मन परे कहिए। मन कहिए अन्य जीव का मन विषय चिंतवन रूप प्राप्त भया अर्थ, ताको परिये ते कहिए जाने सो मन परे ऐसा कहिए है। सो इस ज्ञान की उत्पत्ति मनुष्य क्षेत्र ही विषय है, बाह्य नहीं है, क्योंकि मनुष्यों को ही पाई जाती है ना, और वो भी मुनियों के। पराया मन विषय तिष्ठता जो अर्थ सो मन कहिए, उसी को मन कहा। दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को भी यह मन कहा है, और उसको जो पर्यत यानी जानता है वो मन पर्य है। अब ये सामान्य से एक प्रकार है, फिर भी उसके रुजुमति और विपुलमति ऐसे दो भेद हैं। अब जो सरलपने मन वचन काय करी किया जो अर्थ, मन वचन और काय तीनों को लिया है, यानी सरलता के साथ मन वचन काय के द्वारा किया जो अर्थ, यानी अन्य जीव का मन विषय चिंतवन रूप प्राप्त भया ताके जानने ते निष्पन्न भई यानी उत्पन्न हुई, ऐसे रुजवी कहिए सरल है मति जाकी सो रुजुमति है। और विपुल मति क्या है, वो सरल को तो जानता ही जानता है और वक्रता के वाले को उसको भी जानता है, उसमें भी मन वचन काय से वो सरलता से किया हुआ, और कुटिलता, कुटिल जिसकी मति है, वक्रता यानी क्या, कुटिल परिणाम है एक और बात बतावे दूसरी बात, वचन के द्वारा कुछ कहे और मन में कुछ अन्य होवे, तो इसको कुटिल मति कहते हैं। तो सरल वाले को भी जानेंगे और कुटिल वाले को भी जानेंगे, ये विपुल मति है। अब रुजुमति मन परे ज्ञान, ये 561 का अंतिम पैराग्राफ। रुजुमति मन परे ज्ञान नियम करी तीन प्रकार है। रुजु मन विषय प्राप्त भया अर्थ का जानन हारा, एक बात, यानी सरल मन के द्वारे में उसके द्वारा जो चिंतन किया पदार्थ उसको जानने वाला। रुजु वचन विषय प्राप्त भया अर्थ ताका जानन हारा, अकेल मन की नहीं वचन की भी बात आती है ना बहुरी, रुजु काय विषय प्राप्त भया अर्थ ताका जानन हारा, ऐसे तीन भेद है। कल हमने भी यहाँ पढ़े थे तीन भेद, मन द्वारा सोचा हुआ, वचन द्वारा बोला हुआ, और काय द्वारा अभिनीत, ऐसा कहा था वहां। और विपुल मति ज्ञान 6 प्रकार का, ये 562 पृष्ठ पर अभी लिखा है। उसमें ऐसे समझना कि जो रुजुमति का जो विषय उसको तो जाने ही जाने, और कुटिल मन, कुटिल वचन या जो कुछ अन्य काय की चेष्टा है, कुटिल छल कपट वाली, उसको भी जाने, तो ये 6 प्रकार हो जाएंगे विपुल मति के। एकेंद्रिय में क्या कैसे सोचेगा, मन नहीं है तो वचन भी नहीं है उसके काय के द्वारा वो सोच कर थोड़ी वो क्रिया होती है उसकी, उसकी जो काय की, वो तो संगी पंचेंद्रिय होगा वो पहले, तो वो मन वचन की बात, उसके मन वचन भी होने चाहिए ना। अभी असंख्यात भाव कहेंगे तो उसमें बीच में वो आ जाएंगे, एक इंद्रिय आदि पर्याय बीच में हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल पड़ेगा, काय की बात करेंगे ना वहाँ। देखो अभी एक ये आपका जो प्रश्न है ना, वो कैसे जानते क्या है, तो देखो दूसरा पैराग्राफ 562 पृष्ठ पर, तीन रुजुमति विपुलमति ज्ञान के अर्था यानी विषय ते शब्द को व अर्थ को प्राप्त भय प्रकट हो है, उनका जो विषय है वो शब्द के द्वारा या अर्थ के द्वारा प्राप्त होकर प्रकटता है, सो कही है। कोई भी सरल मन करी निष्पन्न होत संता यानी होता हुआ त्रिकाल संबंधी पदार्थनी को चिंतवन भया, त्रिकाल संबंधी को भी पुराने कोई बात को भी याद करके उसके बारे में सोच रहा है, जैसे बचपन में हम कहाँ रहते थे, क्या था हमारा घर, कैसा था, क्या है, ऐसे पूर्व संबंधी सोच रहा है। वह सरल वचन करी निष्पन्न हो तो संता तिनको कहत भया, यह हम बता रहे किसी दूसरे को वचन के द्वारा। वह सरल काय करी निष्पन्न हो तो संता तिनको करत भया, ये बताएगा ना, ये ऐसा ऐसा था, यह कुछ इतनी बड़ी गाड़ी थी हमारी, ये इतना बड़ा ये कुछ था, ऐसा कुछ हाथ से बताएगा, काय की चेष्टा से बताने की कोशिश करेगा, ये तो उसने किया है, या तो मन के द्वारा सोचा है, वचन के द्वारा कहा है, या काय के द्वारा भी कुछ एक्शन की है अपनी भाषा में। पीछे भूली करी, वो तो स्वयं तो भूल गया अपने क्या कहा था या अपने क्या सोचा था हमने। कालांतर विषय याद ही करने को समर्थन न हुआ, उसको याद नहीं आ रहा है अपने मन की बात। और आय करी यानी आकर रुजुमति मन परे ज्ञानी को पूछत भया, या तो वे पूछेंगे या यादी करने का अभिप्राय को धारी मौन ही तय खड़ा रहा। पूछा भी नहीं, मौन से ही खड़ा रहा, परंतु उसका अभिप्राय वो तो यानी याद करने की कोशिश कर रहा है। तो तहां रुजुमति मन परे ज्ञान स्वयमेव सर्व को जाने हैं। उसने क्या सोचा था या क्या बताया था, क्या कहा था, उनके काय की चेष्टा क्या थी, वो मन परे ज्ञानी अनिंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान से जानते हैं। तैसे ही सरल व वक्र मन, अभी ये विपुल मति में भी ऐसे लगाना, सरल या वक्र के द्वारा वो सोचा हुआ, कहा हुआ या काय के द्वारा किया हुआ कालांतर से भूल गया और उनके सामने जाकर खड़े तो वो भी जानेंगे। ऐसे इनका स्वरूप जानना। मैं ये सारा पढ़ नहीं रही, इसका अर्थ बता दिया, अब आगे हम जाएंगे नीचे के पैराग्राफ में 562 पृष्ठ पर। त्रिकाल संबंधी पुद्गल द्रव्य को वर्तमान काल विषय कोई जीव चिंतवन करे है, तिस पुद्गल द्रव्य को रुजुमति मनपर्य ज्ञान जाने हैं। बहुरी त्रिकाल संबंधी पुद्गल द्रव्य को कोई जीव अतीत काल विषय चिंतया था वा वर्तमान काल विषय चिंतवे है वा अनागत काल विषय चिंतवेगा, तीनों काल लिए ना, अगले भव की भी बात ली उसमें, ऐसे पुद्गल द्रव्य को विपुल मति मन परे ज्ञान जाने हैं। वो मन की तरफ देखकर नहीं जान रहे,
वो जीव की तरफ देखते
हैं। वो अपने उसको तो सामने कौन सी जीव है उसको कुछ शंका है, उसको कुछ ऐसे याद करने की कोशिश कर रहा है, वो देखा तो उसको मति ज्ञान से, और फिर वो डायरेक्ट मन से सोचकर नहीं या उसके मन के परमाणु को देखकर नहीं। आपका प्रश्न है ना, मति उसको मन नहीं कहा यहाँ, मन तो वो सोच जिस पदार्थ के बारे में सोचा था या सोच रहा है या सोचेगा उस पदार्थ को यहाँ मन रख कहा है, उस पुद्गल द्रव्य को यहाँ मन कहा है, मन के विषय को मन कहा है। और उसको ये मुनिराज प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा, जैसे अवधि ज्ञानी प्रत्यक्ष ज्ञान से जानते हैं, वैसे उन विशिष्ट आत्म प्रदेशों से वो ज्ञान जानते हैं, सारा उनके ज्ञान में आ जाता है। हम जो जानते हैं वो इंद्रियों के द्वारा या मन के द्वारा अनुमान लगा के या ऐसा क्या हो सकता है ऐसा सोच सोच कर, वो ऐसी नहीं उनकी बात, वो तो मतिशुद्ध ज्ञान की बात हो गई। ये मन परे ज्ञान अवधि ज्ञान तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। देखो उसमें क्या लिखा था, ये आगे के पेज पर आ गए, देखो 563 पर 442 की टीका। जैसे पूर्वे कहा था, इस पुस्तक में जैसे पूर्व में कहा, अवधि ज्ञान की बात दृष्टांत के तौर पर देखे फिर बाद में बताएंगे क्या पहले कहा था। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान सर्व अंगतय उपजे है। भव प्रत्यय किसे होता है मालूम है आपको? हाँ, देव और नारकियों को, वो तो होता ही है, तीर्थंकरों को भी जन्म से ही होता है। तो ये भव प्रत्यय अवधि ज्ञान सर्व अंगतय उपजे है, पूरे ही आत्म प्रदेशों के द्वारा ये भव प्रत्यय अवधि ज्ञान उपजता है। और गुण प्रत्यय शंकादिक चिन्ह नितय उपजे है, गुण प्रत्यय ने विशिष्ट गुण के द्वारा यानी विशिष्ट विशुद्धि के द्वारा या उसके, तो ये जो उपजता है, तो विशिष्ट शंकादिक चिन्ह का अर्थ क्या होता है? हाँ, जो जो सु अवधि जो है ना, तो नाभि के ऊपर कुछ विशिष्ट शुभ चिन्ह स्वस्तिक है, शंख आदि जो है, वहां से जो उत्पन्न होता है उतने आत्म प्रदेशों से। और जो कु अवधि है वो नाभि के नीचे के कुछ आत्म प्रदेशों से उत्पन्न होगा। 522 पृष्ठ निकाल। पूर्वे क्या कहा था वो भी सोच देखेंगे ना। पांच सौ बाईस पृष्ठ पर दूसरा पैराग्राफ। अवधि ज्ञान दो प्रकार का है, एक भव प्रत्यय एक गुण प्रत्यय। तहां भव जो नारकाधिक पर्याय, नारकाधिक में नारक और देव दोनों लेना, ताके निमित्त है सो भव प्रत्यय है। जो नारकादि पर्याय धारे ताके अवधि ज्ञान होई ही होई, ताते यानी इसलिए इस अवधि ज्ञान को भव प्रत्यय कहिए। बहुरी गुण प्रत्यय कहिए, सम्यक दर्शनादि रूप सोहे निमित्त जाका सो गुण प्रत्यय है। सम्यक दर्शनादि के द्वारा वो विशिष्ट विशुद्धि के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए गुण प्रत्यय कहा। मनुष्य तिर्यंच सर्व ही के अवधि ज्ञान नाही, सबको नहीं होता है, किसी किसी को होता है। जाके सम्यक दर्शनादि की विशुद्धता होई ताके अवधि ज्ञान होई, ताते इस अवधि ज्ञान को गुण प्रत्यय कहिए। विशिष्ट गुण है ना वो उसका, इसलिए। तहां भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देवनी के, नारकिनी के और चरम शरीरी तीर्थंकर देवनी के पाई है। अभी अरविंद भाई ने याद दिलाया था ना, तीर्थंकरों को भी वो भव प्रत्यय होता है। सो यहु भव प्रत्यय अवधि ज्ञान सर्वांगोत्थम कहिए, सर्व आत्मा के प्रदेशिनी विषय तिष्ठता। सब जगह रहने वाला ऐसा कौन है आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में, तो कर्म है। तो ऐसा जो अवधि ज्ञान आवरण और वीर्यांतराय कर्म ताके क्षोभ क्षमते उत्पन्न हो है भव प्रत्यय, क्योंकि सर्वांग आत्म प्रदेशों से उत्पन्न होता है। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है, अभी वो किसको होगा? सो पर्याप्त मनुष्य और सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच इन्हीं के संभवे है। असंगियों में तो तिर्यंच असंगी में तो होता ही नहीं है, मनुष्यों में भी पर्याप्त में होगा, अपर्याप्त तो वो लब्धि अपर्याप्त बिल्कुल छोटी आयु वाले हैं, उनके तो होने का कोई सवाल नहीं है। सो यहु गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान शंखादि चिन्ह भवम कहिए, नाभि के ऊपर शंख कमल वज्र साथिया माछला कलश इत्यादि का आकार रूप जहाँ शरीर विषय भले लक्षण होई, तहाँ संबंधी जे आत्मा के प्रदेश, शरीर में कोई विशिष्ट चिन्ह होते उनके और वहाँ के जो आत्म प्रदेश, तीनी विषय तिष्ठता वहाँ जो अवधि ज्ञानावरण कर्म है उतने आत्म प्रदेशों का, जो अवधि ज्ञानावरण कर्म और वीर्यांतराय कर्म तिनके क्षोभ क्षमते उत्पन्न हो है, उतने ही आत्म प्रदेशों के द्वारा वो प्रत्यक्ष जानेंगे। जैसे हम चक्षु इंद्रिय का वहां से ग्रहण होता है ना, रूप का ग्रहण उतने ही आत्म प्रदेशों के द्वारा होता है। ज्यादा कम की बात नहीं, वहीं पर है वो तो पूरे ही जीव का एक उसके पर्याय कहेंगे, फिर भी जानने का जो उपयोग रूप जो कार्य वो वहां से होगा। यह अवधि ज्ञान की बात चल रही, मन परिज्ञान की नहीं। अभी वो विषय भी आगे अवधि का हम छोड़ेंगे, अपने मूल विषय पर फिर आते हैं। 563 पृष्ठ पर यानी अवधि ज्ञान की बात की, एक तो भव प्रत्यय वो सर्वांग से उपजता है और गुण प्रत्यय विशिष्ट प्रदेशों से उपजता है। तैसे मनपर्य ज्ञान, अभी मनपर्य ज्ञान को समझा रहे हैं, द्रव्य मन तय उपजे है। कहाँ के? अब जहाँ द्रव्य मन की रचना है। मैंने तो सुना है कि उसके जो आठ पंखुड़ी है ना, उसकी टिप्स जो है वहां से ये मनपर्य ज्ञान उत्पन्न होता है। कहीं पढ़ा था, अभी मुझे याद नहीं, उसमें है क्या? देखो उसके नीचे ही लिखा है 563 पृष्ठ पर। सो द्रव्यमन, द्रव्यमन कहाँ है उसको बता रहे। हृदय स्थान विषय प्रफुल्लित आठ पांखुड़ का कमल के आकार, अंगोपांग नाम कर्म के उदय तई, 23 जाति की पुद्गल वर्गणानि विषय मनोवर्गणा है, तीनी स्कंदनी करी निब्जे है, ऐसा नियम है। यह द्रव्यमन काहे से उपजता है? मनोवर्गणा से उपजता है। वो कहाँ पर होती है उसकी रचना? तो हृदय के स्थान में। और उसका आकार कैसे है? खिले हुए कमल के जैसे। और वो कमल कैसा होना चाहिए? आठ पांखुड़ी वाला। ये द्रव्यमन की बात यहाँ बताई। देखो नीचे फिर 444 की टीका, तिस मन का नौ इंद्रिय ऐसा नाम है। नौ कहिए ईशत, किंचित मात्र इंद्रिय है। नौ इंद्रिय, जैसे इंद्रिय को करण कहते हैं और मन को अंतःकरण कहते हैं, अंतरकरण अंदर वाला, वैसे इसको नौ इंद्रिय भी कहते हैं। जैसे स्पर्शनादिक इंद्रिय प्रकट है तैसे मन के प्रकटपना नहीं, ताते मन का नौ इंद्रिय ऐसा नाम है। सो तीस द्रव्य मन विषय मति ज्ञान रूप भाव मन भी उपजे है और मनपर्य ज्ञान भी उपजे है। भाव मन यानी वो ज्ञान की पर्याय लेना वहाँ, द्रव्य मन तो पौद्गलिक रचना है और भाव मन वो मन के द्वारा जो वहाँ ज्ञान चलता है उसको वो भाव मन कहेंगे। अब ये मनपर्य ज्ञान किसको होता है उसकी बात आगे समझाइए 564 पृष्ठ पर। प्रमत्ता आदि सात गुणस्थान विषय कहाँ से कहाँ तक होता है वो भी बता दिया कल हमने, पूछा था ना, तो 6 से लेकर 12 तक। अब किसको होता है? बुद्धि, तप, वैक्रिक, औषध, रस, बल और अक्षिण, इन सात रिद्धिनी विषय एक दो या आदि रिद्धिनी या अधिक रिद्धियों से जो युक्त है, संयुक्त है और कैसे है, वर्धमान वर्धमान ने बढ़ते हुए विशेष रूप चारित्र के धारी जो महामुनि है तिनके मनपर्य ज्ञान हो है अन्यत्र नाही। पहले में पहले मुनियों को ही होता है ये बात हमें पता है, परंतु मुनियों में भी विशिष्ट रिद्धि के धारी है और फिर विशिष्ट चारित्र के धारी ने अधिक स्थिरता वाले अधिक विशुद्धि वाले हैं, वो विशुद्धि के काल में उनके मनपर्य ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। ये तो अभी हमारी बात चली रही ना, बुद्धि रिद्धि, तप रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, औषध रिद्धि, अभी ये बात अपनी आने वाली है। अभी तो बुद्धि के बाद बारे में हमने देखा था, कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारी बुद्धि और संभिन्न श्रोतृत्व आदि। अब देखो उसके भी आगे पढ़ेंगे 446 की टीका। रुजुमति मन परे ज्ञान है, सो अपने व अन्य जीव के स्पर्शनादिक इंद्रिय और नौ इंद्रिय मन और मन वचन काय जोग तिनकी सापेक्षतई उपजे है। और विपुल मति मन परे ज्ञान, सो अवधित ज्ञान किसी नाई ने उसके भांति उसके समान अवधित ज्ञान के समान तिनकी अपेक्षा बिना ही नियम करी उपजे है। अभी नीचे पहला रुजुमति मन परे है, सो प्रतिपाती है, प्रतिपाती यानी वो तो छूट सकता है, यानी पहले में पहले उनके उपयोग काहे से, वो तो पहले सामने किसी को देखा या उसका स्पर्श किया ये, और फिर बाद में उसके बारे में उन्होंने जाना। ये रुजुमति की बात है, विपुल मति तो अवधि ज्ञान जैसे डायरेक्ट ही बिना किसी नियम से जानेंगे कोई, हाँ सहायता तो जानने के लिए नहीं, परंतु मनपरे ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, तो मति ज्ञान में इंद्रिय मन की सहायता से मति ज्ञान होगा और उसके पश्चात मनपरे ज्ञान होगा, तो इसमें ऐसी अपेक्षा की जरूरत नहीं, ऐसा कहना चाहते हैं। देखो रुजुमति है वो प्रतिपाती है, दूसरा विपुल मति मनपरे है सो अप्रतिपाती है, अप्रतिपाती यानी वो गिरता नहीं है। जाके विशुद्ध परिणामनी की घटवारी होई सो प्रतिपाती कहिए, उसमें घटौती हो सकती है। जाके विशुद्ध परिणामनी की घटवारी न होई सो अप्रतिपाती है। रुजुमति मनपर्य तो विशुद्ध है, जाते प्रतिपक्ष कर्म के क्षोभ क्षमते ही निर्मल भया है। प्रतिपक्ष कौन सा कर्म होना चाहिए, इनका प्रतिपक्ष कर्म कौन सा है? मन परे ज्ञानावरण तो उसके क्षोभशम से उत्पन्न हुआ है, तो ये तो विशुद्ध है ही है, परंतु विपुल मति मन परे कैसा है, विशुद्ध तर है, अधिक विशुद्ध है, तरतम भाव कहते हैं ना, एक से दूसरा ज्यादा विशुद्ध है। जाता है अतिशय करी निर्मल भया है, अब 565 पृष्ठ पर। परजीव के मन, हाँ, प्रत्यक्ष होने में क्या है, सकल पर प्रत्यक्ष तो है ही नहीं है, मन पर ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है और हमें आवरण है तो हमें क्यों नहीं है, अभी आप ही बोलो। ये मन परे ज्ञान कैसा, वो ज्ञानावरण है, मन परे ज्ञान, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, कैसे कर्म है, देशघाती कर्म है, कर्म देशघाती है। अभी हमारे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञानावरण का जो है वो देशघाती का वहां उदय चल रहा है, देशघाती स्पर्धकों का उदय है, देशघाती प्रकृतियों में सर्वघाती भी स्पर्धक होते हैं और देशघाती भी होते हैं। अभी हमें अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान नहीं है तो अवधि ज्ञानावरण और मन परे ज्ञानावरण का सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, और जिनको मन परे ज्ञान प्रकट है उनका उन कर्मों का क्षोभशम चल रहा है। हाँ, देशघाती का उदय। अभी देशघाती में भी बहुत सारी ग्रेड्स है, देशघाती का भी आवरण अधिक तो मन परे ज्ञान थोड़ा कम, अधिक क्षोभशम है तो उनका उघाड़ भी ज्यादा है, तो हम कहेंगे वो विपुल मति वाले हैं। तो जिस जितने मात्रा में क्षोभशम, कहीं कहीं शब्द आया था ना तीव्र क्षोभशम, मैक्सिमम ज्ञान है वहां कहेंगे तीव्र क्षोभशम। देखो ये 565 पृष्ठ पर पहला पैराग्राफ, पर जीव के मन विषय सरलपणे चिंतन रूप तिष्ठता जो पदार्थ ताको पहले तो इहा नामा मति ज्ञान करी प्राप्त होई, क्या है ना, पहले वो इहा वाला होगा, ऐसा विचार कि यहाँ का मन विषय क्या है, क्या यानी क्या है, यहाँ उनके मन का प्रयोग होता है, अपने मन के द्वारा सोचते इसके मन में क्या हो, यहाँ तक तो मति ज्ञान है और जो वहां जिसको जानते वो प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जानते वो मन परे ज्ञान, पीछे रुजुमति मन परे ज्ञान करी तीस अर्थ को प्रत्यक्षपणे करी रुजुमति मन परे ज्ञानी जाने हैं, यह नियम है, इसलिए वो मति ज्ञान पूर्वक कहा उसको। देखो और विपुल मति की क्या बात है उसके आगे का पैराग्राफ, अतीत काल विषय चिंतिया व अनागत काल विषय जाका चिंतन होगा, ऐसा बिना चिंतिया या वर्तमान काल विषय किछु एक आधा सा चिंतिया, ऐसा अन्य जीव का मन विषय तिष्ठता अनेक भेद लिए अर्थ वाको पहले प्राप्त हुई, वाका मन विषय यहू है ऐसा जानी, पीछे अवधि ज्ञान की नाई विपुल मति मन परे ज्ञान तीस अर्थ को प्रत्यक्ष जाने, वहां भी मन के द्वारा जान लिया क्या होगा ऐसा यहा नहीं है, वहां पर बिना यहा के ये है ऐसा जान लिया, और फिर बाद में मन परे ज्ञान के द्वारा वो प्रत्यक्ष जाना। अभी हम आगे पढ़ेंगे अपने धौला में। आप कहते वो आदमी सामने होना चाहिए, देखो हर एक के पकड़ पकड़ कर मन परे ज्ञानी को कहाँ पढ़िए किसके मन में क्या क्या चल रहा है। हाँ, वो तो समझाने के लिए तो बता दिया वैसे। मति ज्ञान के द्वारा तो वो मनुष्य को ही जान रहा है ना, वो तो सामने वाले, परंतु अभी मानुषोत्तर पर्व के अंदर वाले वो बाहर के जीवों को भी जान, मानुषोत्तर पर्व के पास जो महिराज है वो बाहर के स्थित देवों की और चिरंचों की भी बात की, क्या वो देख कर जानते ऐसा है क्या, मुझे पता नहीं। हाँ, हाँ, क्योंकि कोई क्षेत्र उनके लिए रुकावट नहीं है ना वैसे, परंतु वो जिस संबंधी चिंतन कर रहा है वो वहां तक होनी चाहिए। अभी जितने हमें प्रश्न उठते हैं सभी का उत्तर तो नहीं मिल रहा है, क्या करें। अभी यहाँ हमारे मन पर्यायों की बात हो गई, अभी 12 नंबर का हम सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। नमो दशपूर्वी यानम, दशपूर्विक जिनों को नमस्कार हो। दशपूर्विक यानी जिनको दश पूर्व का ज्ञान है। ये पूर्व कहाँ होते हैं और कितने होते हैं? 14 पूर्व होते हैं। कौन से अंग में होते हैं? 12वें। हाँ, तो 12वें अंग में से जो 14 पूर्व है उनमें से 10 पूर्व को जानने वाला, इसका अर्थ वो 11 अंग पढ़ चुका है। हमेशा मिथ्या दृष्टि की बातें आती है, वहां क्या हमने सुना है? गुरुदेव के 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान है, सुना है ना बहुत बार। तो यहाँ हम पढ़ेंगे 10वें पूर्व में क्या विशेषता है। यहाँ भिन्न और अभिन्न के भेद से दशपूर्वी दो प्रकार है, यानी भिन्न दशपूर्वी और अभिन्न दशपूर्वी। उनमें 11 अंगों को पढ़कर अ के ऊपर बिंदी लगाना, पश्चात 11 अंग के बाद 12वें अंग में से क्या क्या है देखो। परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका, इन 5 अधिकारों में निबद्ध, यानी इन 5 अधिकारों में बटा हुआ या उन अधिकारों के द्वारा गुंथा हुआ, ऐसे दृष्टिवाद के पढ़ते समय, ये दृष्टिवाद किसका नाम है याद है? 12वें अंग का। और ये दृष्टिवाद जो अंग है उसमें क्या क्या है, तो उसके 5 भेद किए। एक तो परिकर्म है, दूसरा सूत्र, तीसरा प्रथमानुयोग, चौथा पूर्वगत जिसमें 14 पूर्व आते हैं, और 5वां है चूलिका। तो इन 5 अधिकारों में निबद्ध ऐसा जो दृष्टिवाद अंग है 12वें नंबर का, उसको पढ़ते समय उत्पाद पूर्व से लेकर पढ़ने वालों के, उत्पाद पूर्व ये पहला है, पहला पूर्व पहले नंबर का, उससे लेकर पढ़ने वालों के दशम पूर्व विद्यानुप्रवाद के समाप्त होने पर, ये 10वें पूर्व का नाम है विद्यानुपूर्व, उसके समाप्त होने पर अंगुष्ठ प्रसेनादि 700 क्षुद्र विद्याओं से अनुगत, रोहिणी आदि 500 महाविद्याएं भगवान क्या आज्ञा है ऐसा कहकर उपस्थित होती है। देखिए विशिष्ट इतना उन्होंने पढ़ने के बाद महाविद्याएं यानी कोई देवताएं वहां प्रकट होती है और पूछती है भगवान क्या आज्ञा है। तो कौन कौन सी विद्याएं प्रकट होती है? तो रोहिणी आदि 500 महाविद्याएं, और किनके द्वारा अनुगत, अनुगत यानी कौन सी विद्याएं उनको फॉलो करती है, अन्य क्षुद्र विद्याएं, अंगुष्ठ प्रसेन आदि 700 क्षुद्र विद्याएं। महाविद्याओं का नाम है रोहिणी आदि 500 महाविद्याएं, और उनके पीछे पीछे या उनके साथ साथ आने वाली अन्य 700 क्षुद्र विद्याएं, उसमें अंगुष्ठ प्रसेन आदि जो कुछ 700 है, सबकी के नाम नहीं लिए, एक का नाम लिया है, आदि विद्याएं प्रकट होती है, उपस्थित होती है। इस प्रकार उपस्थित हुई सब विद्याओं के लोभ को जो प्राप्त होता है वह भिन्न दशपूर्वी है। विशिष्ट विद्याएं प्रकट होती है तो उसमें ही फंस जाता है जीव, कोई लोभ को प्राप्त होता है। ये विद्यानुवाद वाला ऐसा जो कुछ है उसमें वो बहुत सारी वशीकरण, सम्मोहन आदि बहुत सारी विद्याएं होती है उसमें, तो उसमें उलझ जाएगा जीव, तो वहां तो कितने ही मिथ्यात्व को भी चले जाएंगे, ऐसे हो सकता है। इसलिए 9 पूर्व तक पढ़ा हुआ ऐसा बार बार कहा है, इसमें देखते वो ज्ञान मार्गना में होगा वो। नहीं नहीं वो विद्यानुवाद उसकी बात कर रहे हैं। अभी हम कहाँ तक आए थे? 500 थी ना। अभी हमने जो पूर्व ज्ञान मार्गना की बात, 486 पृष्ठ पर। 487 निकालना। देखो ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका में पेज नंबर 487, उसको पढ़कर फिर हम आगे बढ़ेंगे। 14 पूर्वों के नाम यहाँ बताए, मिला 346 की टीका। उत्पाद यानी ये सबके आगे पूर्व शब्द लगाना, उत्पाद आग्रायणीय, वीर्य प्रवाद, अस्ति नास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान प्रवाद। इसका नाम पहले कभी सुना था? हाँ, तीस वर्ष के किसकी बात है? वो परिहार विशुद्धि वाले की। वो तीर्थंकर के पाद मूल में इस सूत्र इसको पूर्व को पढ़ते, प्रत्याख्यान पूर्व को। अब ये दसवां जो है विद्यानुवाद, इसी को वहां विद्यानुप्रवाद ऐसा कुछ कहा है, विद्यानुप्रवाद कहा, विद्यानुवाद एक ही बात है। फिर कल्याणवाद, प्राणवाद, क्रिया विशाल और त्रिलोक बिंदुसार, ये तो 14 पूर्व है, बराबर। अब इसके हरेक का क्या क्या विषय वस्तु है वो सब बताया ही है, हम केवल दसवीं की बात देखेंगे। पेज नंबर है 515। दसवां पूर्व तीसरा पैराग्राफ। देखो बहुरी विद्यानिका है, अनुवाद कहिए, अनुक्रमते वर्णन इस विषय, अनेक विद्याओं का वर्णन है, ऐसा विद्यानुवाद नामा दसवां पूर्व है। इस विषय सात से अंगुष्ठ प्रसेन, यहाँ अंगुष्ठ प्रसेन आदि लिखा है ना, वही बात है। ये अंगुष्ठ विद्या, प्रसेन विद्या वगैरह अलग अलग, प्रसेन आदि अल्प विद्या, और पांच से रोहिणी आदि महाविद्या, तीन का स्वरूप समर्थता यानी उन विद्याओं का सामर्थ्य, साधनभूत मंत्र यंत्र पूजा विधान सिद्ध भये पीछे उन विद्यानिने का फल, बहुरी अंतरिक्ष भौम अंग स्वर स्वप्न लक्षण व्यंजन छिन्न, ये आठ महानिमित्त इत्यादि प्ररूपीय, यानी इन सब का वहां वर्णन है, इन सारे ही विद्याओं का। सो या के वो कितने पद है उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। तो ऐसा जो है उसका अभ्यास करने पर ये विद्याएं प्रकट होती है, और उसके लोभ में जो वश हो जाता है उसको यहाँ भिन्न दशा पूर्वी कहा। किंतु अभी यह धौला में आना, नीचे से तीसरी लाइन अभी यहाँ, जो कर्म क्षय का वो कर्य हुआ है, कर्म करना, उसको कर्म क्षय का अभिलाषी होकर उनमें लोभ नहीं करता वह अभिन्न दशपूर्वी कहलाता है। उनमें अभिन्न दशपूर्वी जिनों को नमस्कार करता हूं, यह सूत्र का अर्थ है। क्योंकि विद्याओं के लोभ में चला जाएगा तो उसका तो मुनिपना भी भ्रष्ट हो जाएगा, है न, सम्यक तो से भी गिर सकता है। तो अभिन्न दशपूर्वी जिनों को नमस्कार करतु, यह सूत्र का अर्थ है। शंका, भिन्न दशा पूर्वियों की व्यावृत्ति कैसे होती है? व्यावृत्य ने हमने दो शब्द देखा, अनुवृत्य ने जिन शब्द लगा लेना, तो उसमें से दशपूर्वी को अभिन्न दशपूर्वी को ही लिया, भिन्न दशपूर्वी को छोड़ दिया, तो उसका छूटना कैसे हुआ ये कह रहे हैं। अनुवृत्ति और व्यावृत्ति, अनुवृत्ति ने उसको लगा लेना जिन शब्द हम अनु एन टू फॉलो, व्यावृत्ति ने भी उसको बीच में छोड़ दिया, तो भिन्न शब्द को हटा दिया, ये कैसे सिद्ध होता है? भिन्न दशपूर्वियों को नमस्कार क्यों नहीं किया, अभिन्न दशपूर्वियों को ही जिन कहकर नमस्कार क्यों कहा है, ये प्रश्न है। समाधान, जिन शब्द की अनुवृत्ति होने से उनकी व्यावृत्ति होती है, क्योंकि भिन्न दशपूर्वी जिन नहीं हो सकते, भिन्न दशपूर्वियों के जिनत्व नहीं है, क्योंकि जिनके महाव्रत नष्ट हो चुके हैं उनमें जिनत्व घटित नहीं होता। कितने स्पष्ट शब्द से, क्योंकि वो विद्याओं के लोभ में आ गए ना, अभी वो कहाँ, उनका मुनिपना रहा ही नहीं है वहां पर। अब शंका, आचारांगादि अधस्तन अंग, अभी हमने अंगों के नाम देखे थे ना, और पूर्व के धारकों को, ये हमने तो अभी पूर्वों के नाम देखे हैं, अंग भी मालूम है, पहलो आचारांग बखानो ना, दूजो सूत्रकृतांग, ऐसे आचारांग सूत्रकृतांग वगैरह जो सारे हैं, ये तो नीचे वाले अंग जो है, तो अधस्तन अंग कहा, ये 14वें अंग की डायरेक्ट बात की, तो नीचे वाले जो अंग को जानने वाले हैं उसको क्यों नहीं लिया? हाँ, तो आचार अंग आदि अधस्तन अंग और पूर्व के, यानी अधस्तन पूर्व यानी दस पूर्वी के पहले वाले पूर्व, जैसे नौ पूर्व को जानने वाले हैं, एक पूर्व को जानने वाले हैं, उनको नमस्कार क्यों नहीं किया? समाधान, क्योंकि उनको भी नमस्कार किया ही है, क्योंकि वे इनमें गर्भित है। ऐसा नहीं कि वो केवल दसवें को ही जान रहा है, जो दसवें को जानता है वो नीचे के सभी को जानता है, इसलिए उनको नमस्कार आ गए उसमें। शंका, 14 पूर्वों के धारकों को पहले नमस्कार क्यों नहीं किया? नहीं, क्योंकि जिन वचनों पर प्रत्यय स्थान अर्थात विश्वास उत्पादन द्वारा दशपूर्वियों के त्याग की महिमा दिखलाने के लिए पूर्व में उन्हें नमस्कार किया है, जिन वचनों की श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा कि ये विद्याओं में कुछ नहीं रखा ना, ये तो विद्याओं में जो फंस गए वहां, जिन वचनों की श्रद्धा कहाँ रही वहां, वो तो भिन्न श्रोतु थे, महाव्रत भी चले गए और उनका मुनिपना भी नष्ट हो गया, समय को से भी भ्रष्ट हो गए, तो उनको तो नहीं कहेंगे कि इनके जिन वचनों पर श्रद्धा है, और इतनी विद्याएं प्राप्त होने पर भी उसका दुर्लक्ष कर देना, उसके प्रति कोई राग भाव या उससे कोई लोभ की उत्पत्ति ही नहीं होना, इसका महात्म्य दिखाने के लिए, तो त्याग की महिमा दिखाने के लिए पूर्व में उन्हें नमस्कार किया है। अथवा श्रुत परिपाटी की अपेक्षा पहले दशपूर्वियों को नमस्कार किया है, श्रुत परिपाटी यानी अभी श्रुत ज्ञान में वो क्रम से है ना, पहले दशपूर्वी हो गए फिर 14 पूर्वी हो गए, इसलिए पहले उनको नमस्कार किया है। अब 14 पूर्वियों को करेंगे, नमो 14 पूर्वी आणम, 14 पूर्वी जिनों को नमस्कार हो। यहां जिनों को इस पद की अनुवृत्ति आती है, समस्त श्रुत ज्ञान के धारक, अभी 14 पूर्वी कहने से समस्त श्रुत ज्ञान के धारक है, 14 पूर्वी जिन है उन 14 पूर्वी जिनों को नमस्कार हो, यह सूत्र का अभिप्राय है। फिर शंका, शेष अधस्तन पूर्वियों को नमस्कार क्यों नहीं किया? जैसे पहले भी प्रश्न पूछा था अधस्तन अंग वालों को और पूर्व वालों को, वैसे यहां भी पूछ रहे हैं। नहीं, क्योंकि उनको भी नमस्कार किया ही है, क्योंकि अधस्तन पूर्वों के बिना 14 पूर्व घटित ही नहीं होते। 14 पूर्व कहा, 14वां पूर्व नहीं कहा है, जो 14 को 14 तक जान रहा है, यानी वो पहले से 14 तक सबको जान रहा है। शंका, 14 पूर्व का ही नाम निर्देश करके किसलिए नमस्कार किया जाता है? ये 14वें का ही नाम लेकर क्यों कहा? क्योंकि 10 पूर्वी का लिया, उसके बाद 14वें का ही अकेले का नाम क्यों लिया? उसका समाधान करते हैं, क्योंकि विद्यानुप्रवाद की समाप्ति के समान 14 पूर्वों की समाप्ति में भी जिन वचन पर विश्वास देखा जाता है। शंका, 14 पूर्व की समाप्ति में कौन सा विश्वास है? वहां तो समझ में है कि इतनी विद्याएं प्राप्त हुई थी फिर भी उसका कुछ लोभ नहीं किया, तो यहाँ क्या बात सिद्ध होती है? उसका समाधान, 14 पूर्वों को समाप्त करके रात्रि में कायोत्सर्ग से स्थित साधु की प्रभात समय में, ये नियम है, ओ भवनवासी वान्यंतर ज्योतिष और कल्पवासी देवों द्वारा शंख कहला और तूर्य के शब्द से व्याप्त महापूजा की जाती है। ये 14 पूर्व को समाप्त करेंगे, उसका ज्ञान हो जाएगा और रात्रि में कायोत्सर्ग में स्थित रहेंगे और सुबह उनकी, ये चारों ही जो प्रकार के देव है ना, भवनवासी व्यानवंतर ज्योतिषी और कल्पवासी, उनके जो वाद्य है उनके द्वारा उनकी महापूजा की जाती है उन मुनिराज की। इन दो स्थानों में जिन वचनों पर विश्वास पाया जाता है फिर भी वो पूजा करने से कुछ अपने की महानता हो गई ऐसी उन्हें नहीं लगता है। अन्य जीवों ने उनकी प्रशंसा की तो उन्हें अगर उसमें कुछ अपना उस क्षोभम ज्ञान में अधिकता हो जाएगी तो कैसे हो सकता है, इसलिए वो कहते कि वहां उनका विश्वास सिद्ध हो जाता है।
देखिए यहाँ पर तूरिया, ये तूरिया
वाद्य,
वाद्य का नाम है, काहला वगैरह, शंख,
शंख काहला तूर्य वगैरह,
देखो यहाँ पर
शब्द से लिखा ना।
देखो यहाँ पर एक बात विशेष रूप से अपने ख्याल में आनी चाहिए, यहाँ जो मनुष्य साधु अवस्था का जीव है जिसको ये 14 पूर्व का ज्ञान हो जाता है उनकी पूजा देव करते हैं ऐसा यहाँ पर लिखा है, चारों प्रकार के देव, ये जैसा शास्त्र में हमें कथन मिलता है वैसा कहीं मनुष्य देव की पूजा करता है क्या? चतुर्थ गुण स्थान वर्ती क्यों न हो, ऐसा कहीं देखने में आता है क्या? ध्यान से शास्त्र पढ़ना, यानी अभी जो परिपाटी चल रही ना कि वेंतरों को पूजा करे, पद्मावती की पूजा करे, क्षेत्रपाल की भूमिया की पूजा करे, ये सारा मिथ्यात्व है। देखो यहाँ पर जो मैं क्या बात बताना चाहता हूँ, देवा की पूजा करते हैं ऐसा कथन तो शास्त्र में हमें प्राप्त होता है, लेकिन मनुष्य जाकर किसी देव की सम्यक दृष्टि क्यों न हो पूजा करता है ऐसा कहीं भी कथन मिलता है क्या, ये देखना है अपने को।
देखो शंका, जिन वचन की अपेक्षा से सब अंग और पूर्व समान है, क्योंकि वे जिन के वचन है ना, जिनेन्द्र भगवान के वचन ही है, अतः उन सबका नाम निर्देश करके नमस्कार क्यों नहीं किया गया? ये 10 पूर्वी का और 14 पूर्वी की क्या विशेषता है कि उन्हीं का नाम लिया, एक एक पूर्व का नाम लेकर नमस्कार करना था, ऐसे शंकाकार की शंका है। नहीं, क्योंकि जिन वचन रूप से सब अंग और पूर्वों में सदृशता के होने पर भी विद्यानुप्रवाद और लोक बिंदुसार का महत्व है। लोक बिंदुसार ये किसका नाम है? 14वें पूर्व का। हमने अभी उसका नाम पढ़ा था ना, त्रिलोक बिंदुसार कहा था कि लोक बिंदुसार ही कहा था? त्रिलोक बिंदुसार का, एक ही बात है। हाँ, अब उसकी क्या विशेषता है उसको बताते हैं। देखो इनका महत्व, क्योंकि इनमें ही देव पूजा पाई जाती है, देव आकर पूजा करते हैं, 10 पूर्व पूर्ण होने पर आते हैं पूजा करते, वैसे 14 पूर्व होने पर भी आते हैं और पूजा करते हैं। अन्य एक एक पूर्व पढ़ते तब आकर को पूजा का वो ऐसा नियम नहीं है। हाँ हाँ, 9 पूर्व तक मिथ्यात्व होता है और 10वें को पढ़कर भी जो नीचे चला जाएगा उसके 9 पूर्व का ही ज्ञान रह गया वो उसके भी महाव्रत भ्रष्ट होते हैं ऐसा लिखा है, महाव्रत भ्रष्ट होते हैं ऐसा लिखा। हाँ नहीं, 14 वाले का तो कोई बात ही नहीं है, महाव्रत भ्रष्ट होता है ऐसा लिखा। 14 पूर्व तो मिथ्यात्व को जाएगा नहीं। देखो 14 पूर्व का धारक मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होता, और उस भव में असंयम को भी प्राप्त नहीं होता, यह इसकी विशेषता है। देखो इसको संपूर्ण शुद्ध केवली भी कहा है, ये लेफ्ट साइड में देखा 70 पृष्ठ की फुट नोट, सयल आगम पार गया, यानी सकल यानी संपूर्ण आगम का, पार गया ने पारगामी यानी जानकार। शुद्ध केवली नाम सुप्रसिद्धा जे, शुद्ध केवली नाम से जो प्रसिद्ध है, एदान बुद्धि रिद्धि 14 पूर्वित्ति नामेणम, उनके बुद्धि रिद्धि और 14 पूर्वी उनके है, होते हैं 14 पूर्व वाले हैं। आगे भी लिखते हैं संपूर्ण श्रुत केवलिता चतुर्दश पूर्वित्वम, चतुर्दश के पूर्व को जानने वाले, 14 पूर्व को जानने वाले उनके संपूर्ण श्रुत केवलिता होती है, उसको श्रुत केवल ज्ञान भी कहा है। पहले आया था हमने श्रुत ज्ञान के प्रकरण में श्रुत केवली या श्रुत केवल ज्ञान के। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखो नमो अठंग महानिमित्त कुशलाणम, अष्टांग महानिमित्तों में कुशलता को प्राप्त जिनों को नमस्कार हो। ये अष्टांग महानिमित्त ने निमित्तों के द्वारा कुछ कथन करते हैं, निमित्त ज्ञानी कहलाते हैं। जैसे आकाश को देखकर, पृथ्वी को देखकर, या कोई सामने वाला जीव है उसको देखकर, उसका मुंह देखकर, उसके हाथ देखकर, अलग अलग जो होते हैं, तो उसके द्वारा ये निमित्त ज्ञानी कहलाते हैं। उसमें ये अभी 8 कौन कौन से निमित्त है वो भी बताएंगे। हाँ देखो ये 14 सूत्र के नीचे जो अर्थ किया है, अंग यानी अंग देखकर वो निमित्तों का कथन करना, स्वर व्यंजन लक्षण छिन्न भौम स्वप्न और अंतरिक्ष, ये महानिमित्तक 8 अंग है, कहा भी है, अभी ये गाथा में भी कहा है, उसको बताते हैं। अंगम सरो वंजन लक्षणानि छिन्नम च भौमम सुमनंतरिक्षम एदे निमित्ते हियराहणिचा जानन्ति लोयस्य सुहासुहायम्। अंग स्वर व्यंजन लक्षण छिन्न भौम स्वप्न और अंतरिक्ष, इन निमित्तों से आराधनीय साधु जनसमुदाय के शुभाशुभ को जानते हैं, यानी उनको आने वाली कुछ घटनाएं आदि संबंधी उन्हें ज्ञान होता है, इसको निमित्त ज्ञानी कहलाते हैं उनको। छिन्न ने कुछ फट गया, मान लेते आपको पैर वस्त्र फट गया, तो उसको देखकर उनके विशिष्ट ज्ञान, ये कौन से आने वाली घटना क्या है उसको बताएंगे, वो छिन्न कहलाता।
देखो आपको मालूम है कि जब स्वामी जी जब दीक्षा ले रहे थे उनके संप्रदाय की, तब वो हाथी पर चढ़ने वाले थे, ऐसा कुछ कोई इसमें चढ़ने वाले थे, तो उनकी धोती फट गई थी उस समय, यानी वो तो ऐसा हो गया था कि अभी वो ये छोड़ के दिगंबर धर्म।
तभी उनके मन में आया था कि ये वस्त्र सहित वाला कुछ ठीक नहीं है, ये जो छूटने वाले, उन्होंने स्वयं बताया प्रवचनों में, ये बात प्रवचन में मैंने सुना है, वो यानी टेप में भी नहीं, डायरेक्ट हमने सुना है, हम सुनकर जाते थे ना, तब ये बात आई थी उनके प्रवचन में, यानी ऐसा उन्हें कुछ अंदाज आ गया कि ये कुछ ठीक नहीं है, ये दीक्षा ले रहे हो। हाँ देखो ये अभी हम इसको फिर पढ़ते हैं, ये एक एक को सब समझाएंगे, नीचे उसका अर्थ बता रहे। देखो अभी अंग यानी क्या क्या 10 पूर्व में भी आ गया था, हमने देखा था महानिमित्त का ज्ञान वहां भी होता है उनके। अभी उनमें मनुष्य और तिर्यंचों के सत्य स्वभाव वात पित्त कफ तथा रस रुधिर मांस मेदा अस्थि मज्जा एवं शुक्र तथा शरीर के निम्न व उन्नत वर्ण गंध रस और स्पर्श को देखकर जीवित मरण सुख दुख लाभ अलाभ और प्रवास आदि विषय ज्ञान अंगगत महानिमित्त है। हम कहते ना वो फेस रीडिंग, चेहरा देखकर कुछ बात बताते हैं, ऐसी ऐसी बातें होती है ना, तो विशिष्ट अंग देखकर उसमें सब लिया, रस रुधिर मांस मेधा अस्थि वगैरह। नहीं वो नाड़ी वाला, वो नाड़ी ज्ञान की वो बात नहीं है, वात पित्त कफ वगैरह ले लिया उसने। अभी स्वरन दूसरा क्या है, स्वर। तो किसी का स्वर सुनकर, जैसे देखो यहाँ खर, खर का अर्थ क्या होता है, हाँ नहीं गधा गधा खरगोश नहीं, खर है नहीं गधा नहीं, खर खर कहते हैं, खर पिंगल। नेवला बंदर या सर्प विशेष, उल्लू काक शिवा, अभी ये अलग अलग पंछी है और प्राणी है। श्रृगाल नर और नारी के स्वर को सुनकर लाभ अलाभ सुख दुख और जीवित मरणादि को जानना स्वर महानिमित्त कहा जाता है। अब व्यंजन यानी क्या, तिल आनु और मसा आदि को देखकर, जैसे हाथ में तिल है या मुंह पर तिल है, जो कुछ मसा है जो कुछ है, तो उसको देखकर उन सुख दुखादि का जानना व्यंजन महानिमित्त है। अभी लक्षण यानी लक्षणों के द्वारा जानना, तो कौन से लक्षण, उरल ललाट हस्ततल यानी पाम हाथ का तलवा, पाद तलादि में जैसे हाथ की रेखाएं देखते हैं वैसे पैर की भी देखते हैं। मुझे मेरे चाचा को शौक था ये पैर के वैसे देख देख यथाक्रम से 108 64 32 स्वस्तिक नंद्यावर्त। देखो स्वस्तिक तो रेगुलर स्वस्तिक है, नंद्यावर्त है ना, वो तो कभी कभी ऐसे स्वस्तिक में डिजाइन होते ना ऐसे, उसको नंद्यावर्त कहते हैं। स्वस्तिक के फिगर मगर उसके वो आगे ऐसा नहीं, वो मंदिरों में वगैरह ऐसा देवलाली में भी पीछे लगाया है, देखो उसको नंद्यावर्त कहते हैं। आवर्त ये रेगुलर स्वस्तिक, और फिर ये ऐसे कुछ ऐसा वो होता है ना, कुछ ये ऐसी कुछ होती है रचना उसकी, ये ऐसे वाले वो नंद्यावर्त कहते उसको। ये मनियों से वगैरह बनाए हुआ आपने देखा होगा देवलाली में या अन्य जगत कहीं कहीं मंदिरों में लगाया हुआ होता है, ये नंद्यावर्त कहते उसको। स्वस्तिक जैसी कोई रचना, श्री वृक्ष शंख चक्र अंकुश चंद्र सूर्य एवं रत्नाकर आदि लक्षणों को देखकर तीर्थंकरत्व, पहले यथाक्रम से लिया ना, तीर्थंकरों में ऐसे 108 लक्षण हो गए, 64 वो चक्रवर्ती के ऐसे 64 लक्षण हो गए, बलदेवत्व वासुदेवत्व 32 लक्षण है, उसको जानना लक्षण नामक महानिमित्त है। उनके अंगों पर विशिष्ट जगह विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे हम फिंगरप्रिंट्स भी देखते हैं, तो 10 फिंगरप्रिंट्स है तो उसमें भी देखते हैं ना, कोई शंख है के चक्र है, हम देखते रहते थे बचपन में कितने कितने शंख है कितने चक्र है, ऐसे यहाँ पर भी होता है, माथे पर भी ये जो बारीक ऐसे बाल होते हैं ना, लव जिसको कहते हैं, उसका भी कहीं ऐसे चक्र जैसा आकार होता है, या कोई कोई ऐसे अलग अलग होते हैं, बिल्कुल ऐसे चक्र जैसे किसी किसी को देखा है मैंने, तो ये अलग ऐसे चिन्ह कहलाते हैं। ये मोना के सिर पर ऐसे बिल्कुल बालों का ऐसा चक्र इधर जहाँ बिंदी लगाते हैं, ये इसको लक्षण कहते हैं, बस इतना ही। उसमें कुछ हमें तो कुछ उसमें निमित्त ज्ञान है नहीं है, ये महानिमित्त कहलाते। शरीर छाया की विपरीतता, वस्त्र व अलंकार का छेद तथा मनुष्य और तिर्यंच आदिकों की चेष्टा व आकार को देखकर शुभाशुभ को जानना छिन्न महानिमित्त कहा जाता है। वस्त्र और अलंकार का छेद कहा ना, जैसे माला पहनी और टूट गई है, तो उसके द्वारा वो कुछ बताएंगे ऐसे। छिन्न महानिमित्त कहा जाता है। ये शरीर छाया की विपरीतता वगैरह भी, जैसे छाया नॉर्मली कैसे पड़ती है, फिर वो विपरीत देखकर वो आने वाली कुछ घटनाओं को भी बता देते हैं। ये ऐसे बहुत सारी, पहले तो ये उनके पास ऐसे तो कुछ होते नहीं थे ना, तो अपना मरण भी वो आने वाला मरण 6 महीने के अंदर जानते, उसकी भी बहुत सारी बातें मैंने पढ़ी भी है कहीं के अपने शास्त्रों में। जैसे वो नमोकार मंत्र पढ़कर ऐसे पश्चिम की ओर आकाश में देखते हैं और बिना सिर का वो शरीर की ऐसे आकृति दिखती है, तो 6 महीने में मरण, ऐसे कुछ कुछ मैंने बातें बहुत सारी पढ़ी है। अभी ये फॉर एग्जाम्पल ये, और वो भी एग्जैक्ट नहीं है, परंतु ये 6 महीने के अंदर मरण होगा या ऐसी कितनी ही बातें उनके ज्ञान में आती है, ऐसे निमित्त ज्ञान है और ऐसे निमित्त क्या वो सपनों के वगैरह भी कहते हैं उसमें बहुत सारी बातें। उनका कहना है वो M.K. गांधी वाला ना, M.K. गांधी होता था, हाँ वो M.K. गांधी, वो वहाँ तो अपने शास्त्र पढ़कर ही वहाँ निमित्त ज्ञान बताकर वहाँ करोड़ों पे लाखों रुपए डॉलर कमाए थे उसने। हाँ कौन, तो अपने शास्त्रों में तो ये सारे भरा पड़ा है। और ऐसे निमित्त ज्ञानी तो शांति सागर महाराज वगैरह वो तो बताते थे, आपको याद होगा, वैसे कहीं देख कुछ बिल्कुल सूखा है, कुछ नहीं है, और फिर बोले यहाँ नहीं, अभी गांव में यहाँ नहीं करना है, आगे चलो, पर्वत पर ले गए लोगों को, अभी यहाँ रुकेंगे नहीं, ऐसे हवा में देखकर या जमीन देखकर बताया। और फिर वहां गए तो इतना मूसलधार वर्षा की जैसे महापूर आ गया, पहले तो कुछ नहीं दिख रहा था। ऐसे होते हैं विशिष्ट तप के द्वारा, ऐसी उनकी प्राप्त होती है ज्ञान की, ऐसी विशुद्धि होती है। हमें तो ये चमत्कार लगते हैं, तो उसके पीछे पीछे हमको बता क्या होगा क्या होगा, तो उनके पीछे लगे, तो उनको तो सारा धंधा वही धंधा हो जाता है क्या, क्योंकि लोगों तो उसी में पड़ी है ना, उनको तो अपने शुभाशुभ बताओ बताओ बताओ, उन्हें कहा अपने आत्मा की चिंता, वो तो शुभाशुभ संयोगों की बात करेंगे, हमें कैसे आने वाले और कैसे टाल सकेंगे उसको। ये ज्योतिषियों के पीछे क्यों इतने लोग दौड़ते हैं, क्या होने वाला है और बुरा कैसे टाले। तो देखो ये उसका महानिमित्त कहा जाता है। छिन्न भूमिगत लक्षणों को देखकर, भूमिगत यानी भूमि के द्वारा, भूमि को देखकर ग्राम नगर खेड़ा करवट, ये ग्राम नगर यानी अभी बड़े बड़े है ना, उसको ग्राम फिर नगर खेड़ा करवट घर व आराम आदिकों की वृद्धि हानि को कहना भवम नामक महानिमित्त है। स्वप्न छिन्न स्वप्न और माला स्वप्न दो प्रकार के, उसके स्वरूप को देखकर भावी कार्य को जानना स्वप्न नामक महानिमित्त है। जैसे हम देखे ना तीर्थंकरों जब माता के गर्भ में आते हैं तो माता को 16 स्वप्न पढ़ते हैं, तो उसका सपनों का अर्थ फिर बताते हैं राजा। ये चंद्रगुप्त मौर्य के भी हमने देखे थे, उसके सपने आए थे और उसका अर्थ किया था, ये कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं घटने वाली ये सब उसमें आई थी बातें, ये शास्त्रों में लिखी हुई है सारे। उनमें वृषभ हाथी सिंह समुद्र चंद्र सूर्य जल से परिपूर्ण कलश लक्ष्मी का अभिषेक अग्नि तालाब भवन विमान रत्न राशि सिंहासन क्रीड़ा करती मछलियों का युगल और पुष्पमालाओं का युगल इन परस्पर के संबंध से रहित 16 स्वप्नों का सोती हुई जिन जननी को जो दर्शन होता है वह छिन्न स्वप्न है। छिन्न स्वप्न अलग अलग ये वस्तुएं उनको दिखाई दी, इस वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु का कोई संबंध नहीं है, अलग अलग दिखाई दी ना, ये छिन्न स्वप्न। पूर्वापर से संबंध, वो घ का ध करना, संबंध रहने वाले भावों का स्वप्नांतर से देखना माला स्वप्न है। माला ने वो कंटिन्यूटी में कोई स्वप्न देखते या ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, ये माला स्वप्न कहेंगे। किसको? स्वप्न आना सपने में आता था क्या, उनके ऐसे विचारधारा में आता था? वो जाति स्मरण भी कहला सकते हैं, अकेले स्वप्न की बात नहीं, जाति स्मरण में होता है। अभी जो बेनश्री को था वो तो जाति स्मरण था, हाँ वो मति ज्ञान का भेद है। वो तो स्वप्न है, हाँ वो छिन्न, क्योंकि अलग अलग है, उसका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। जैसे वृषभ यानी बैल दिखा, सिंह दिख दिया, मालाएं दिखाई दी, भवनवासी का विमान दिखा, ये उसमें परस्पर में कोई संबंध नहीं। परंतु तो ऐसे किसी को सपना आया कि चलो ये नाग आया उसने मुझे काटा या जो कुछ ऐसे कंटिन्यूटी जिसमें है, हाँ वो नहीं, वो तो माला स्वप्न कहलाएंगे। देखो अभी ये हो गया, चंद्र सूर्य एवं ग्रह के उदय व अस्तमन तथा जय पराजय, ग्रह घर्षण, बिजली का कड़कता, इंद्रधनुष, बिजली का कड़कना चाहिए हो ना, जय पराजय, ग्रह घटना, विज्जु चड़किंदाऊ चंदाइच, चंद्र व सूर्य के परिवेश, बिजली का कड़कना ले तो अच्छा है। इंद्रधनुष, चंद्र सूर्य के परिवेश, उपराग एवं बिंब भेदादि को देखकर शुभाशुभ का जानना अंतरिक्ष नामक महानिमित्त है। अंतरिक्ष में यानी स्पेस, अभी हम देखते हैं ना उसमें घटने वाली कुछ घटनाओं को या चंद्र सूर्य के बिंबों को आदि देखकर उसको अंतरिक्ष महानिमित्त कहते हैं। इन अष्टांग महानिमित्तों में कुशल जिनों को नमस्कार हो, यह सूत्र का अभिप्राय है। जिन शब्द की अनुवृत्ति होने से असंयत और संयता संयतों का ग्रहण नहीं है, ये ज्ञान नहीं है ऐसी बात नहीं, वो निमित्त ज्ञान में से कुछ थोड़ा बहुत हो उसकी बात नहीं, परंतु ये संयत है इसलिए, संयत है इसलिए नमस्कार है उनको। हाँ संयतों को ही ज्यादा करके, परंतु अन्यों को भी नहीं होगा ये बात नहीं है। जैसे तीर्थंकरों के पिता उनका फल बताते हैं तो उनको तो उस स्वप्नों के संबंध में कुछ ज्ञान तो होगा, परंतु वे संयत नहीं है ना। तो यहाँ संयतों को नमस्कार है। शंका, ज्ञान से विशिष्ट जिनों को पहले ही नमस्कार किस लिए किया? समाधान, चारित्र की अपेक्षा ज्ञान की प्रधानता बतलाने के लिए ज्ञान विशिष्ट जिनों को पहले ही नमस्कार किया। ये सारे ज्ञानियों की बात चल रही ना, नमो ओहि जिनानम परमावधि जिनों को नमस्कार सर्वावधि, सभी ज्ञान की ही बातें कर रहे हैं, तो ज्ञान को पहले क्यों कहा? तो उसकी प्रधानता बतलाने के लिए। शंका, चारित्र से ज्ञान की प्रधानता क्यों है? उसका समाधान, चूंकि बिना ज्ञान के चारित्र नहीं होता अतः ज्ञान प्रधान है। ये कोई आए थे, जो कुछ आजकल नई फैशन चल रही है ना, एवं ऐसे सिर हो जाना, मेडिटेशन करना, हमको अनुभूति होती है, ये हम वी स्टार्ट विद एक्सपीरियंस, हमको ज्ञान नहीं चाहिए, हम एक्सपीरियंस से बताना चाहते हैं लोगों को ये ज्ञान की ये जैन है कि क्या है कि हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, भगवान का ज्ञान नहीं है, बस हम अंदर से चालू करते हैं, ये उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ मान्यता चलती है ना। हाँ, और हम आपको सिखाएंगे 1250 रुपये। हाँ क्या रविशंकर, कितने ही शंकर निकलते हैं अभी, क्या पैसा कमाने का है ना। और उसको कहीं के नाम दे देते, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ रेवरिंग, आर्ट ऑफ फ्लॉरिंग, कुछ कुछ होता है वो। हाँ 1250 रुपये आज बुला रहे थे 3 तारीख को है करके। हाँ आए थे घर में न्योता देने के लिए, हमने बोला आप ऐसा करो, आप ही जरा वो तत्व परिचय वगैरह पढ़ो, जय नहीं था लड़का, तो आपका ही कुछ उसमें फायदा हो जाएगा, अभी आपने एक्सपीरियंस किया अच्छी बात है, अभी उसको क्या कहे कि ये सब ठकोस रहा है। हाँ देखो, चारित्र के फल से विशेषता को प्राप्त जिनों को नमस्कार करने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। अब ये चारित्र के द्वारा, ये कुछ तप के द्वारा विशेष रिद्धियां प्राप्त होती है, उसकी बात अब करेंगे। पहले ज्ञान की बात उन्होंने बता दी। नमो वियोवण पत्ताणम, विक्रिया रिद्धि को प्राप्त हुए जिनों को नमस्कार हो। अब ये विक्रिया रिद्धि भी आठ प्रकार की है, वो कौन कौन सी उसको बताते हैं। अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और कामरूपित्व, इस प्रकार विक्रिया रिद्धि आठ प्रकार है। उनमें महापरिणाम युक्त शरीर को संकुचित करके परमाणु प्रमाण शरीर से स्थित होना अणिमा नामक विक्रिया रिद्धि है। बड़े शरीर को एकदम छोटा बनाना वो अणिमा है, अणु जैसा अणिमा है ना। महापरिमाण चाहिए, महापरिमाणम शरीरम, अच्छा है आपने याद दिलाया, महापरिमाणम, महापरिमाण युक्त। ये हमेशा जो छपने वालों की यहाँ मिस्टेक थी, परिणाम और परिमाण को एक कर देते हैं। परिमाण यानी प्रमाण, बड़े प्रमाण वाले शरीर को छोटा सा एकदम अणु जैसा छोटा बना देना, इसको अणिमा कहते हैं। परमाणु प्रमाण देहस्थ वस्तु को मेरु पर्वत के सदृश करने को महिमा रिद्धि कहते हैं, और उसी को एकदम बड़ा बना देना मेरु पर्वत जैसा महान, तो उसको महिमा कहेंगे, महिमा रिद्धि। पहली अणिमा हुई, अब महिमा यानी बड़ा करना। मेरु प्रमाण शरीर से मकड़ी के तंतुओं पर से चलने में निमित्तभूत शक्ति का नाम लघिमा है। इतना बड़ा शरीर करने पर बिल्कुल वो मकड़ी का तंतु होता है ना, यानी वो कॉबवेब जिसको कहते हैं, मकड़ी का वो तंतु, उस पर से भी चल सके ऐसे शरीर को एकदम हल्का बना देना। इतना बड़ा बनाया फिर भी इतना हल्का हो सकता है, तो उसको लघिमा कहते हैं। भूमि में स्थित रहकर हाथ से चंद्र सूर्य के बिंब को छूने की शक्ति प्राप्ति, शक्ति प्राप्ति रिद्धि कही जाती है, इसका नाम है प्राप्ति रिद्धि। बाकी रिद्धियों की बात कल करेंगे हम, पढ़ू इतना। अच्छा, कुलाचल और मेरु पर्वत के पृथ्वी कायिक जीवों को बाधा न पहुंचाकर उनमें तपश्चरण के बल से उत्पन्न हुई गमन शक्ति को प्राकाम्य रिद्धि कहते हैं। पर्वत के अंदर में से भी चल सके, वहां के पृथ्वी कायिकों को कोई बाधा पहुंचाए बिना, इसको कहते हैं प्राकाम्य रिद्धि। सब जीवों तथा ग्राम नगर एवं खेड़े आदिकों के भोगने की तपसे उत्पन्न हुई शक्ति ईशित्व रिद्धि कही जाती है। ईशित्व ने ईश्वरपना। मनुष्य, हाथी, सिंह एवं घोड़े आदि के अपनी इच्छा से बरताने की शक्ति का नाम वशित्व रुद्धि है, उसको वश करना कहते ना, वशित्व। वशित्व का ईशित्व रुद्धि में अंतर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि अवशीकृतों का भी उनका आकार नष्ट किए बिना ईशित्वकरण पाया जाता है। इच्छित रूप के ग्रहण करने की शक्ति का नाम काम रूपित्व है, चाहे जैसा रूप धारण करें। हम देखते हैं ना देवों में ये तो होती है, विक्रिया विक्रिया शक्ति होती है, ये तो मुनियों को ये तप के द्वारा प्राप्त हुई है। अब बाकी बात हम कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देतो रो। विनोद भाई।